नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है रिजुनेट लाइफ थ्रू स्पिरिचुअलिटी, जीवन संजीवनी आध्यात्मिकता के आज के अंक में। साथियों, पिछले अंक में हमने समझा था कि मोटापा क्या है और इसको कैसे मेजर किया जा सकता है, हम जान सकते हैं। आज के इस अंक में हम आगे बढ़ रहे हैं और ये जानेंगे कि मोटापे के क्या दुष्परिणाम है, क्या कारण है। तो आइए चलते हैं डॉक्टर श्रीमंत जी के पास और उनसे जानते हैं। सर नमस्कार।
नमस्कार
सर, कल के सफर से हम आगे बढ़ना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि वास्तव में मोटापे के कारण क्या है।
जी, कारण तो बहुत वास्तव में सरल है और सहज है। एक शब्द में मैं कह सकता हूं, आज मनुष्य के जीवन शैली में एक संपूर्ण परिवर्तन हम देख रहे हैं
जी,
जिसके कारण लोग मोटे होते जा रहे हैं। और उस जीवन शैली में सबसे पहली बात मैं आपको समझाऊंगा, थोड़े समय के अंदर ही देर इज ए ग्रीन रेवोल्यूशन विथ हाइब्रिड वेराइटीज एंड बेटर फर्टिलाइजर्स सो दैट दे प्रोड्यूस्ड एबंडेंट फूड्स। आज हम देख रहे हैं हमारे पास इतने सारे वेराइटी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, बिना सीजन के सब कुछ आपको प्राप्त है
जी।
तो इसलिए लोग प्रचुर मात्रा में जब चाहे जो चाहे खा रहे हैं। और साथ साथ आज घर घर में आप देख लीजिए, ऐसा घर नहीं होगा शायद जिसके घर में टेलीविजन नहीं होगा।
बिल्कुल,
आप कहीं ट्रेन में सफर करते समय बहुत सारे झोपड़ियां आप देखेंगे, उनके घर में भी टीवी एंटेना देखेंगे आप।
सही।
तो ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में टेलीविजन नहीं, और टेलीविजन में भी 24 आवर्स चैनल्स, जब चाहो आप कोई भी चैनल खोल के देखो। सबके पास वीडियो गेम्स हैं, सेलफोन गेम्स हैं, तो लोग 24 घंटा टीवी देखते रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है और इसलिए मोटे होते जा रहे हैं। तो आज बच्चे भी हमारे आउटडोर गेम्स क्या है भूल गए हैं। और साथ साथ माताओं को सबसे बहुत बड़ी सुविधा हो गई कि घर घर में जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस है, आप देख लीजिए हर एक की किचन में मिक्सर ग्राइंडर से लेके कपड़े धोने के लिए, इवन सुखाने तक की ड्राइंग मशीन भी सबके घर में है।
ठीक,
पहले जमाने में हमारी माताएं सब कुछ मैनुअली करते थे, कपड़े भी धोते थे, सुखाते थे, इवन सिलपटा में लेके अपना सब मसाला से लेके आटे से लेके सब पीसते थे, परंतु आज सिर्फ एक बटन दबाने का काम रह गया। तो इसलिए हमारी माताएं सबसे ज्यादा मोटे होते जा रहे हैं। तो सार रूप में मैं ये कह सकता हूं कि जब हमारे एनर्जी इनटेक, अर्थात जो भी हम फूड प्रोडक्ट हम खाते हैं, कोई भी चीजें, तो उसमें हमारे जो शरीर में ताकत मिलता है, एनर्जी हम कंजम्पशन करते हैं, वो हमारे आवश्यकता से ज्यादा है। और हम जो मेहनत शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं वो कम मात्रा में हम कर रहे हैं, तो वो एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो डेफिनेटली हमारे शरीर में वो जमा चर्बी के रूप में ही हो जाता है
जी।
तो जिसके कारण हम मोटे होते हैं।
तो मोटापा होने का जो मूल कारण वो ये है कि हम जितनी एनर्जी फूड्स ले रहे हैं हम उसको कंजम्पशन नहीं कर पा रहे, जिसके कारण वो जमा होते जा रहे हैं और हम फैलते जा रहे हैं
जी। देयर शुड बी अ बैलेंस। एक्चुअली अगर जितना एनर्जी हम ले रहे हैं, जितना कंजम्पशन कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, उसी अनुपात में क्या हम शारीरिक एक्टिविटीज हमारी है? अगर नहीं है तो जैसे कोई इनकम बहुत ज्यादा करता है
जी
और खर्चा बिल्कुल नहीं करता है तो क्या होगा?
बैलेंस
बढ़ेगा।
बिल्कुल।
तो ये भी हमारे जो पेट के इर्द गिर्द में और शरीर में जो चर्बी जमा हो जाता है, ये भी हमारा बैंक बैलेंस है। और बैंक बैलेंस किसी का अगर बढ़ता है, चाहे स्विस बैंक में भी क्यों ना छिपा के रखा हो, लेकिन कभी ना कभी वो पकड़ा जाएगा।
इसको तो बैड बैलेंस कहना चाहिए। क्योंकि वो बैंक बैलेंस चलो फिर भी हमें कहीं ना कहीं काम आ सकता है हम आपत्ति के समय, लेकिन ये तो आपत्तियों को पैदा करने वाला।
जी जी। तो इसलिए देखिए, मैं आपको समझाया था कि हमारे पूर्वज जो थे वो वास्तव में मंदिर में पूजने लायक थे, पूजनीय थे। आज हम सभी मनुष्य कैसे हो गए हैं, तो हमारे पूर्वज कोई भी देखिएगा, हमारे लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता आदि आदि, हमारे भारतवर्ष में जो भी मंदिरों में जहां भी हम देखते हैं उनके चित्र देखते ही हम कितने खुश होते हैं। कभी किसी को भी ऐसे मोटे नहीं दिखाया गया है, परंतु आज जो हम इतने मोटे होते जा रहे हैं, तो हम तो ये कह सकते हैं भगवान ने हमको एक बहुत सुंदर मंदिर में पूजने लायक तन देके गए थे, लेकिन इसको हम आज घी तेल का गोदाम बना के रखें। अगर हम एक संतुलन बना के रखेंगे, हम जो भी खा रहे हैं और जो मेहनत कर रहे हैं, दोनों का अगर बैलेंस होगा तो नेचुरली मोटे नहीं होंगे। आज अगर हमारी जीवन शैली को परिवर्तन कर दिया जाए तो नेचुरली ये मोटापा हम नहीं देखेंगे। तो आज लेकिन हमारी जीवन शैली कैसी है आप इस चित्र में देख लीजिए। लोग घर घर में क्या खाते जा रहे हैं, सभी के घर में टेलीविजन, और टेलीविजन देखते हुए जब हम खाते हैं ये सब जंक फूड फास्ट फूड, क्या हालत होगा। दूसरी बात है, लोग आज कॉन्शियस भी हो गए हैं कि हम थोड़ा फिट रहें, एक्सरसाइज करें, तो इसलिए आजकल बड़े बड़े शहरों में आप फिटनेस सेंटर्स, क्लब्स आदि देखेंगे, वेलनेस क्लिनिक देखेंगे
जी।
लोग सवेरे सवेरे आप देखना बहुत दूर दूर से कार ड्राइव करके आएंगे और वो फिटनेस सेंटर में जाएंगे थोड़ा सा हेल्दी रहने के लिए। लेकिन फिटनेस सेंटर देखते हुए आपको समझ में आएगा कि देखिए बीच में जो स्टेयरकेस है वहां कोई नहीं चढ़ रहा है, और बगल में जो एक्सकलेटर है जहां जस्ट खड़ा हो जाने से ही जमीन अपने आप ही ऊपर लेके आपको पहुंचा देगा।
जी, जी, जी।
तो कहने का मतलब है आज लोग हेल्थ कॉन्शियस है लेकिन क्या कर रहे हैं, नो फिजिकल वर्क। सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोग तो जा रहे हैं, किसको मॉर्निंग वॉक करा रहे हैं आप देख लीजिए चित्र में। दूसरी बात है कि आज हमारी सारी हैबिट्स, सब हमारी जो आदतें हैं बहुत बुरी तरह से ये सब बिगड़ चुकी है
जी।
और मुख्य रूप में सब घर घर में सब लोग सिडेंट्री हो गए हैं, लोग हिलना डुलना नहीं चाहते हैं बिल्कुल, जिसके कारण खाते रहे हैं सब प्रकार, एकदम हाई कैलोरी इंटेक हो रहा है लेकिन हिलना डुलना भी नहीं चाहते हैं। हमारे बच्चे आजकल फ्रूट्स वेजिटेबल्स किसी को खाने की इच्छा नहीं, सब वेस्टर्न फूड्स जंक फूड्स ये सब खाने के लिए सबको बहुत ये सब प्रिय है, और जिसके कारण ही, और ये सब वेस्टर्न फूड्स जो आप देख रहे हो, ये बर्गर है, पिज्जा है, ये सब हाई कैलोरी फूड्स हैं। एक बर्गर अगर खाएंगे तो उसमें कम से कम आपको उसको बर्न करने के लिए 8 घंटा आपको मेहनत करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, इतना इसमें कैलोरीज है। तो इसलिए लोग, हमारे बच्चों को यही पसंद है, बड़े बड़े शहरों में लोग यही दिन भर खाते रहते हैं, तो क्या होगा आप बताइए।
बिल्कुल,
तो ये सब कारण है, और WHO भी ये सब बताया है कि फास्ट फूड इज मोर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओबेसिटी। तो अगर हम फ्रूट्स खाएं उसके बदले में उसमें रसायन है, इसमें विटामिन है, सब कुछ है, और आप इतने कैलोरी नहीं है जो एकदम मोटे हो जाएंगे, परंतु इसके बदले में चॉकलेट खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, तो ये हाई कैलोरी फूड खाएंगे तो बच्चे भी इसलिए मोटे होते जा रहे हैं। तो मैं सार रूप में कारण यही बता सकता हूं कि आज लोगों के एक्टिविटी बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी जीरो, सभी के जीवन में तनाव है, और जब व्यक्ति को तनाव होता है, टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, ओवर ईटिंग खाने लगता है, उस स्ट्रेस को मिटाने के लिए खाने लगता है, तो फिर मोटा होता रहेगा। तीसरी कारण है वीडियो गेम्स, सेलफोन गेम्स, घर घर में सबके पास है, बच्चे दिन रात वही ऑपरेट करते रहते। अभी अभी मेरे क्लिनिक में एक पेरेंट्स, उसका टीनेजर क्लास 10th में पढ़ रहा है, एक बेटा, उसको लेके आए थे, कहते डॉक्टर साहब इसको थोड़ा समझाइए, इसके आंखें खराब हो गए हैं, और 24 घंटे में 20 घंटे अपने सेलफोन में वो वीडियो गेम खेलता रहता है, इसको थोड़ा समझाइए। तो आजकल के बच्चे भी दिन रात ये सब वीडियो गेम्स, सेलफोन गेम्स में लगे रहते हैं, और फास्ट फूड, जंक फूड, हॉकर्स फूड, ये तो गली गली में, कहां रिमोट कंट्रोल, कहीं भी आप जाइए देखिए, एकदम रिमोट सेंटर्स, जहां गांव गांव में, जहां आप कभी सोचे भी नहीं होंगे, ऐसे जगह पे भी जाइए देखिए, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक सब उपलब्ध है, और प्रोसेस्ड फूड, इंस्टेंट फूड, लोग मेहनत करना नहीं चाहते, सीधा जाके दुकान से खरीद लो, पैकेट फाड़ो,
खा जाइए।
टीवी रिकमेंडेड फूड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बच्चे दिन रात टीवी देखते रहते हैं, आजकल बिजनेस है, लोग अपने सब प्रमोट करने के लिए कई प्रकार के एडवर्टाइजमेंट देके लोगों को आकर्षित करते हैं, तो ये सब देखे आए दिन नए नई चीजों का डिमांड बच्चों का रहता है, माँ बाप को मम्मी ये चाहिए, पापा ये चाहिए, तो ये सब हाई कैलोरी फूड खाते खाते आज यही दुर्दशा है कि घर घर में बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब मोटे होते जा रहे हैं।
फिजिकली एक्टिविटीज जितनी कम से कम हो रही है वो एक कारण बनती जा रही है हमारे मोटापे का। हम चाहे खाने पीने में है, चाहे कारोबार में है, हम कम से कम एक्टिव रहने के आदि होते जा रहे हैं
जी,
इसके कारण ये हमारे अंदर मोटापे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है
जी। लेकिन साथ साथ ओवर कंजम्पशन हो रहा है, हम जो फूड खा रहे हैं ये सब बहुत हाई कैलोरी फूड है। अगर आदमी बहुत ज्यादा से ज्यादा रसायुक्त, जो हाई फाइबर डाइट और फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब ज्यादा मात्रा में खाए तो वो कभी मोटा नहीं होगा, लेकिन आज ये सब तेल घी मक्खन बटर और सबसे ज्यादा बिल्कुल इसमें प्रिजर्वेटिव्स है, सॉल्ट ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, ऐसी चीजों को हम खा रहे हैं उसमें बिल्कुल रेसाएं बिल्कुल फाइबर बहुत कम है, तो उसके दुष्प्रभाव हमारे शरीर में डायबिटीज हाइपरटेंशन कैंसर आदि आदि ये सब पैदा हो रहे हैं।
दोस्तों इस परिचर्चा में हमने समझा कि मोटापे के कारण क्या क्या है। मुख्य रूप से कारण समझ में आता है कि हमारे लाइफ स्टाइल में चेंज आ गया, हमारे जीवन जीने के ढंग में बदलाव आ गया, हमारे खाने पीने में परिवर्तन आ गया है, हम फास्ट फूड जंक फूड की तरफ ज्यादा आकर्षित होने लगे और हमारी फिजिकली एक्टिविटी शारीरिक श्रम बहुत कम हो गया जिसकी वजह से हम मोटे होते जा रहे हैं। तो मैं अब जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब से कि सर क्या मोटापा के भी कोई प्रकार है, कितने प्रकार का मोटापा होता है?
तो मोटापा वास्तव में मोटापा तो मोटापा ही है, शरीर में चर्बी की बहुलता है तो मोटापा है, परंतु इनफैक्ट मोटापा कई प्रकार के होते हैं। अक्सर करके अगर हम देखें तो मोटापा दो प्रकार के होते हैं, एक है एप्पल सेपेड, दूसरा है पेयर सेपेड, अर्थात एक एप्पल जैसा दूसरा है नाशपाती जैसा
जी।
तो ये दोनों वास्तव में आप देख रहे हैं इस चित्र में, आपको समझ में आएगा, जो हमारे भारतीय हैं इंडियन एशियन इंडियंस हैं, हमारे इस तरफ ज्यादातर लोगों के पेट के इर्द गिर्द में जैसे एप्पल का सेंटर पोर्शन ही थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा होता है, तो इसी प्रकार हमारे शरीर के जो ये मिडिल पोर्शन है इस एरिया में पेट के इर्द गिर्द में ही चर्बी ज्यादा जमा होता है। हाथ पांव भले पतले दुबले होंगे तो इसको सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, एप्पल्स टाइप ओबेसिटी कहते हैं। दूसरा है जो कमर के नीचे साइड में चर्बी ज्यादा होना, उसको पेयर सेपेट कहते हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज में यूजुअली यूरोपियन से अमेरिकन से इस प्रकार के हैं। और ये देखा गया है कि ये एप्पल और पेयर जो बॉडी सेप्स हैं ये वास्तव में इसमें दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। जो जिसके बॉडी की जो साइज है जैसे एप्पल जैसा, देखिए ये सेंट्रल ओबेसिटी इट इज द रूट कॉज, इट इज द कल्प्रिट फॉर डायबिटीज हाइपरटेंशन हार्ट अटैक कैंसर, इस सब बीमारियों का जड़ वास्तव में ये एप्पल सेपेड ओबेसिटी। लेकिन देखा गया है जिन लोगों के कमर के नीचे पेयर जैसे नीचे अगर फेट जमा है तो उनको इतना ये सब बीमारियां नहीं होती है। तो मोटापा सार रूप में दो प्रकार का हम कह सकते हैं, तो एप्पल जैसा एक पेयर जैसा। परंतु जो हमारे शरीर में चर्बी भी जमा होते हैं ये भी कुछ तो चर्बी हमारे चमड़ी के नीचे नीचे ही जमा होते हैं, जिसको हम सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं मेडिकल भाषा में। दूसरा होता है हमारे पेट के अंदर, जिसको हम विसेरल फैट कहते हैं
जी।
तो हमारे शरीर में देखा जाता है मनुष्य के शरीर में जैसे हमारे वाटर कंटेंट कितने हैं, उसमें हमारे मसल्स मास कितने हैं, हमारे चर्बी कितने हैं, ये सब बॉडी में कई प्रकार के परसेंटेज नॉर्मली कितना होना चाहिए, उससे ज्यादा होता है तो बीमारियां होती है, ये सब मेडिकली हम इसको देखते हैं जांच करते हैं। नॉर्मली एक व्यक्ति के शरीर में चर्बी कितना परसेंट होना चाहिए स्टेबुलेशन से आपको क्लियरली पता चलेगा। देखिए फीमेल्स में यूजुअली 20-30% हमारे शरीर में चर्बी का होना चाहिए। दूसरा अगर मेल्स देखा जाए तो इनका 10-20% ही चर्बी होनी चाहिए। अगर कम होता है तो उसको लो कहेंगे, अगर ज्यादा होता है तो भी हाई या वेरी हाई। जैसे फॉर एग्जांपल फीमेल्स में अगर 30-35% तक अगर चर्बी है तो उसको चर्बी की मात्रा हाई कहेंगे, लेकिन 35 से और ज्यादा हो जाता है 50% तक हो जाता है तो वेरी हाई कंटेंट, कई लोगों को होता है इतना परसेंट एकदम चर्बी जमा हो जाता है। मेल्स में हम देखेंगे 20% तक तो ठीक है, 20-25% है तो भी हाई कहेंगे, लेकिन 25% से ज्यादा चर्बी का जमा होता है इसको वेरी हाई कहते हैं। लेकिन ये जो चर्बी जमा होता है बताया, एक तो चमड़ी के नीचे अगर जमा होते हैं तो उसको सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं, और अगर पेट के अंदर होता है तो उसको हम विसेरल फैट कहते हैं। अब देखिए ये जस्ट चमड़ी के नीचे नीचे ये सबक्यूटेनियस फैट है, परंतु उसके बाद जो हमारे मसल्स टिश्यू है एब्डोमिनल मसल्स है उसके अंदर जो चर्बी होते हैं उसको ही विसेरल फैट कहते हैं, और ये विसेरल फैट ही वास्तव में कल्प्रिट है। इसलिए मोटापा में जो दुष्प्रभाव हो रहा है दुष्परिणाम हो रहा है इसके लिए हम कमर के साइज को मापने के लिए कहते हैं, और जिसकी कमर जितनी साइज जितना ज्यादा है अनेक प्रकार की बीमारियों का फिर वो आह्वान करता है। मानो इट इज नॉट ए पैसिव डिपो ऑफ फैट, खाली ये जस्ट ऐसे एक फैट डिपो नहीं है, ये वास्तव में इनफैक्ट इट इज एन एंडोक्राइन ऑर्गन, और साइंटिस्ट लोगों ने देखा है हमें हार्ट अटैक और डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारियों का ये जड़ है। ये जो हमारे पेट के अंदर जो विसरल फैट जमा होता है, इससे ही डायबिटीज और हार्ट अटैक की जो बीमारी है ये पैदा होते हैं।
मोटापे के प्रकार को जान के पता चला कि मोटापे दो प्रकार के होते हैं जी। लेकिन भारतीय मान्यताओं में ये है कि जिनका पेट बाहर है, निकला हुआ है, वही खाते पीते परिवार के समझे जाते हैं, भाई हेल्दी है, देखने में लगता है कि खाते पीते परिवार का है। क्या ये सिद्धांत तो फिर एक तरीके से कुछ कंफ्यूज कर रहा है
जी। मैं आपको इस चित्र में बता सकता हूं, देखिए, इज इट रियली अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, वास्तव में ये पेट के अंदर क्या है, हम जिसको पर्सनालिटी समझते हैं या साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, वास्तव में पेट के अंदर क्या है, जानते हैं इस पेट के अंदर क्या है? इस पेट के अंदर ही डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडेमिया, हार्ट की बीमारियां, ये सब बीमारियां छिपी हुई है। तो इसलिए ये वास्तव में एक खानदान घर के या पर्सनैलिटी के ये निशानी नहीं है, ये तो बीमारी की निशानी है।
इससे तो पता लगता है कि इंसान के अंदर इतनी बीमारियां तो हैं।
जी जी, इसलिए हम बहुत एक हंसी की बात लोगों को सुनाते हैं। देखिए, पहले जमाने में हमारे गांव-गांव में, छोटे शहरों में अक्सर करके लोग हाथी लेके आते थे
जी,
और हाथी घुमाने के लिए घर घर में डोर टू डोर जाके हाथी को लोग पूजा भी करते थे, कुछ खिलाते थे, देते थे। तो हाथी के गले में यूजुअली एक बेल बांध देते थे
जी, घंटा,
वो हाँ, उसके साउंड से लोगों को पता चलता था कि हमारे मुल्क में या हमारे गली में हाथी आ रहा है। इसलिए कहते हैं द बेल साउंड इज हर्ड फर्स्ट, द एलिफेंट कम्स नेक्स्ट। तो वो बेल साउंड से आपको पता चल जाएगा कि ये हाथी आ रहा है। इसी प्रकार हम हंसी में कहते हैं द बेली कम्स फर्स्ट, द हार्ट अटैक कम्स नेक्स्ट।
तो ये साइन है, एक सिंबल है हमारे समझ लेने का कि भाई आगे क्या होने वाला है।
तो इसलिए ये समृद्धि की निशानी नहीं है, ये तो वास्तव में ये एक बहुत स्वास्थ्य की खतरे की घंटी है। ये
तो गंभीर हो जाने की बात है।
हाँ, तो इसलिए ये वास्तव में, देखिए इस चित्र में आप समझ पाएंगे कि ये पेट है कि मटका है।
बिल्कुल मटका ही महसूस हो रहा है।
तो इसलिए एक सुंदर हमारे हिंदी में कहावत है, जब पेट बन जाता है मटका, स्वास्थ्य को लगता है झटका। तो इसलिए हम जो एजुकेटेड लोग हैं उनको कहते हैं द लॉन्गर द बेल्ट द शॉर्टर द लाइफ। आपका बेल्ट का साइज अगर लंबा है तो इट इज मोर देन 40 सेंटीमीटर, देन आप खतरे में हैं, क्योंकि भाइयों के जो कमर के बेल्ट है साइज है 90 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए
जी। तो यहां हमने समझा कि मोटापा ही असल में हर बीमारी की जड़ है। अगर आपका पेट बाहर निकला हुआ है तो आप खाते पीते परिवार के नहीं, एक बड़े अच्छे बीमारियों का घर है। बहुत सारी बीमारियां आपके अंदर पल रही हैं। सर, एक बात सुनने को मिलती है
जी
मोटापे के संबंध में ही
जी,
मेटाबॉलिक सिंड्रोम कोई चीज है, वह क्या है
जी? ये बहुत एक एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है कि आज भारत में, विदेश में तो है ही लेकिन भारत में भी बहुत लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो रहा है। ये एक्चुअली मोटापा के साथ इसका बहुत गहरा संबंध है
जी।
कोई व्यक्ति सिर्फ मोटापा नहीं, मोटापा के साथ साथ जो उसके दुष्प्रभाव बता रहा था, अगर साथ साथ पेट जैसे चर्बी उसके पेट के इर्द गिर्द में ज्यादा है और सेंट्रल ओबेसिटी है, साथ साथ उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ मिलता है और उसका ब्लड शुगर भी ज्यादा दिखा रहा है और साथ साथ उसके कोलेस्ट्रॉल भी हाई है, उसके ट्राइग्लिसरीड ज्यादा है, उसको एलडीएल ज्यादा है और एचडीएल कम है। एलडीएल माना जो हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचाने वाले जो कोलेस्ट्रॉल है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन उसको कहते हैं, और एचडीएल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो हमको हार्ट को ठीक रखता है, वो एचडीएल और अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, तो उसको हम डिसलिपिडीमिया कहते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर मोटा है, अर्थात उसका पेट ऐसा बढ़ा हुआ है, साथ साथ उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, उसका शुगर भी अभी बढ़ने लगा है, साथ साथ उसके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी गड़बड़ है, डिसलिपिडीमिया है, तो ये चारों बातें अगर किसी को है तो इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं और मेडिकल भाषा में इसको हम सिंड्रोम एक्स भी कहते हैं। सेंट्रल ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज इंटॉलरेंस अर्थात हाई ब्लड शुगर और डिसलिपिडीमिया अर्थात आपके कोलेस्ट्रॉल सब बिगड़ा हुआ है। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो कम है और जो बुरे कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक कराते हैं वो ज्यादा है। इसी सिचुएशन में अगर आप पहुंचे हो, इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम और उसका दूसरा नाम सिंड्रोम एक्स भी कहा जाता है।
इस चर्चा से ये बात तो बहुत ही क्लियर हुई है कि फिटनेस और फैटनेस बिल्कुल विरोधी बातें हैं
जी,
ये एक दूसरे से कहीं रिलेट नहीं करती। हाँ। हमें इन पे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा।
फिटनेस और फैटनेस आर इनफैक्ट नेवर क्लोज कंपेनियन
जी।
जो फिट होगा वो कभी फैट नहीं होगा, जो फैट होगा वो कभी फिट नहीं होगा। इनफैक्ट हमारे शरीर तो ऐसा लुमिनस होना चाहिए, अर्थात हमारे चेहरे सकल सूरत से हमारे शरीर से एक रूहानी झलक फलक दिखाई देनी चाहिए, ना कि इट शुड बी वॉल्यूमनस। क्योंकि हम जो खाते हैं आज उसी अनुपात में ही हमारे शरीर की वृद्धि होती है, मोटापा बढ़ता जाता है। तो वी शुड नॉट बी वॉल्यूमनस। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम सचमुच दीर्घायु रहना चाहते हैं तो हमें खान पान कम करना चाहिए। आज दुनिया में लोग ज्यादा खा के ही बीमार हो रहे हैं, मोटापा भी उसका एक मूल कारण है।
जहां बड़े लोगों में डॉक्टर साहब मोटापे की बात देखने में आई, उनकी जीवन शैली का एक कारण है
जी,
वहां आजकल बच्चों के अंदर भी बहुत मोटापा देखने को मिल रहा है, उसके क्या कारण है, क्या वजह है
जी? वास्तव में चाइल्डहुड ओबेसिटी इज ए सीरियस थ्रेट फॉर आवर सोसाइटी। देखा गया है कोई छोटा बच्चा अगर बचपन से अगर एडोलेसेंट एज में अगर मोटा हो गया, बड़ा होने के बाद वो फिर दुबला पतला और आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना वेरी डिफिकल्ट, वो फिर सारा जीवन मोटा रहता है। और आजकल हमारे बच्चे कैसे हो गए हैं देख लीजिएगा। और ये बच्चे दी मॉर्बिडिटी ऑफ ओबेसिटी, छोटे बच्चे भी देखो इतनी सारी बीमारियां हो रही है। इसलिए इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन का कहना है, टेक केयर ऑफ योर किड्स, प्रोटेक्ट योर फ्यूचर। क्योंकि आप जो गलती करके आपको जो बीमारियां आ गई, लेकिन वही गलतियां आपके बच्चे अगर करते रहेंगे तो योर किड्स में डाई बिफोर यू। तो ये इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन का कहना है। देखिए हम बच्चों को क्या खिला रहे हैं, और बच्चे ही अगर एडोलेसेंट एज में अगर मोटे होते जा रहे हैं तो आगे क्या होगा। तो इसलिए ये जो चाइल्डहुड ओबेसिटी, इट इज ए सीरियस थ्रेट फॉर द सोसाइटी।
ये भी बात क्लियर हुई कि बच्चों के अंदर मोटापा के कारण क्या हो रहे हैं। अब एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न सामने है कि इस मोटापे के दुष्परिणाम क्या क्या है।
देखिए मोटापा से तो बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है, और ये भी देखा गया है किसी व्यक्ति का अगर 10 किलो भी बॉडी वेट बढ़ जाता है, उसके हार्ट को 1000 लीटर से भी एक्स्ट्रा खून पंप करना पड़ता है एक दिन में 24 घंटे के अंदर। तो हार्ट बेचारा का क्या हाल होगा सोच लीजिएगा। तो अगर कोई व्यक्ति मोटा हो जाता है, इसको स्ट्रोक की बीमारी होती है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसको मानसिक डिप्रेशन हो जाता है, साथ साथ आंतड़ी में कैंसर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, वो कोई भी काम इतना एफिशिएंटली नहीं कर पाता है, डायबिटीज हो जाता है, और उसके पित्त के थैली में पथरी हो जाती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कोई व्यक्ति अगर मोटा हो जाता है तो सारे शारीरिक वजन उसके घुटने पर आता है
जी।
तो घुटने घिस जाते हैं, जिसको हम फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। आप देखे होंगे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो चल भी ठीक से नहीं पाते हैं, चलते समय देखना ऐसे ऐसे सारा शरीर ऐसा ऐसा हिलता रहेगा, घुटने नहीं हिलते, लेकिन घुटने ऐसे रहेंगे लेकिन सारा शरीर ऐसा ऐसा चलता रहेगा। तो वो वास्तव में उनके घुटने जब घिस जाते हैं, सीवियर पेन होता है, इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। फिर लोग जाके लाखों रुपया देखे, फिर अपने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराते हैं। तो सार रूप में अगर हम देखेंगे मोटापा से तो सारे एड़ी से लेके चोटी तक ऐसा शरीर का हिस्सा नहीं रह जाता जिस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। मेंटल डिप्रेशन होता है, स्ट्रोक हो जाता है, आपके हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, गॉलस्टोन्स होता है, कमर में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, गाउट हो जाता है, वेरिकोज वेन हो जाता है, कितने कैंसर पैदा हो जाता है, क्या क्या नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति सचमुच अगर अपने बॉडी वेट अगर आइडियल मेंटेन करता है, अगर ओवरवेट है 10 किलो भी वेट कम कर देता है, तो कितने सारी बीमारियों से वो मुक्त हो सकता है। जैसे हाइपरटेंशन से बच जाएगा, हार्ट डिजीज नहीं होगी, हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होगी, ब्रेन में हमारे ब्लॉकेज हो जाते हैं जिसके कारण पैरालिसिस हो जाती है वो भी नहीं होगा, और डायबिटीज नहीं होगी, कैंसर नहीं होगा, गॉलस्टोन्स नहीं होंगे, एसिड पेप्टिक डिजीज उसको एसिड रिफ्लक्स होता है वो भी नहीं होगा। कई लोग रात भर सोते नहीं है, तारे गिनते रहते हैं, मोटे लोगों को यूजुअली ये सब होता रहता है। तो इंसोमनिया और स्लीप एपनिया बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है। आज जो मोटे होते हैं देखना, सोते समय उनके जीभ पीछे चला जाता है, फिर एकदम सांस रुक जाता है, सड़न एकदम पूरा बिल्कुल एकदम घबरा के उठते हैं, जैसे कि सांस बंद हो गया, जैसे बहुत बुरी हालत हो जाती है, इसको स्लीप एपनिया कहते हैं। किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कमर में दर्द, प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, सर्जिकल प्रॉब्लम्स। कोई भी मोटा व्यक्ति जब ऑपरेशन के लिए जाता है, सर्जन को जितना डर लगता है, बेहोश करने वाला डॉक्टर को भी डर लगता है। अनेक प्रकार के और भी बीमारियां, जैसे जो मोटा व्यक्ति वो बैठे बैठे एकदम खराटा लगाएगा, बात करते करते सो जाएगा, कोई भी काम इतना बहुत एफिशिएंटली कर नहीं पाएगा। सबसे बहुत बड़ी बात है, बहुत आम बात है कि मोटा व्यक्ति को एक मानसिक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। कहीं भी जाता है, लोग उसको देख के क्या सोचते होंगे, इस प्रकार का एक कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो सार रूप में देखिए, अगर कोई 10 किलो भी अपना बॉडी वेट करता है, बॉडी वेट कम कर देता है, तो इतनी सारी बीमारियों से वो मुक्त हो सकता है। सो ओबेसिटी इज ए सीरियस हेल्थ हजार्ड, और ये एक सुनामी की तरह, एक ग्लोबल सुनामी की तरह हमारे देश में भी आ चुकी है। सो फार साइट एंड फोर साइट कैन हेल्प टू प्रिवेंट फैटनेस। सो योर वेट इंडिकेट्स योर हेल्थ, सो इफ यू मेजर मोर देन इट इज द टाइम फॉर वर्कआउट्स।
तो दोस्तों, आज की इस चर्चा से हमने जाना कि मोटापे के क्या क्या कारण है और मोटापे के दुष्परिणाम क्या है। अगर दुष्परिणामों पर नजर दौड़ाएं तो ओवरऑल ये समझ में आता है कि एडी से लेकर चोटी तक जो भी बीमारियां हो रही हैं, उनके पीछे मोटापा एक मूल कारण है। उस पर हमें पूरा पूरा ध्यान देना पड़ेगा। आज की परिचर्चा यहीं तक। कल हम चर्चा करेंगे कि मोटापे से क्या निवारण क्या है, उसके लिए क्या करें कि हम मोटे ना रहें। आज की यहीं तक। धन्यवाद। नमस्कार।